ओम नमस्ते जी। 231वीं श्रव्य कणिका सत्याद प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्याद प्रकाश के सातवें समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय चल रहा है, जिसके अंतर्गत ईश्वर अवतार लेता है व नहीं, इसकी रोचक चर्चा आपके समक्ष आ रही है। तो गत श्रव्य कणिका में हमने महाभारत जो है समय समय पर उसकी श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई, इसके कारण से वो कैसे उसमें प्रक्षेप वाला भाग भी अंदर घुसा दिया गया, इसकी हमने प्रमाण सहित बातें कही। आगे इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। एक बात और, व्यास जी ने महाभारत को अपने हाथ से नहीं लिखा था, इस कार्य के लिए उन्होंने उस समय के सर्वश्रेष्ठ आशु लिपिक यानी स्टेनोटाइपिस्ट की सेवाएं प्राप्त की थी। व्यास जी के उस लेखक सहायक का नाम था गणेश। गणेश ने व्यास जी का लेखक बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी रुकने न पाए, यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखने का काम तत्काल बंद कर दूंगा। व्यास जी ने गणेश की यह शर्त स्वीकार कर ली, किंतु अपनी ओर से एक शर्त भी गणेश पर लगा दी कि व्यास जी ने कहा बिना समझे एक भी अक्षर न लिखना होगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार कर लिया और लेखक बन गए। गणेश बड़ी तेजी से लिखते जाते थे, व्यास को कभी कभी सोचने के लिए रुकने की आवश्यकता अनुभव तो होती, तो वे बीच बीच में ऐसा अटपटा श्लोक बोल देते थे जिसको समझने के लिए गणेश जी को ठहरना पड़ जाता था। वे श्लोक ऐसे होते थे जिसका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता था और भीतर से कुछ और। इस बीच व्यास जी बहुत से श्लोक बना लेते थे। इस विषय में व्यास जी ने लिखा अष्टौ श्लोक सहस्राणी अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। इस ग्रंथ में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ और शुकदेव यानी व्यास पुत्र समझते हैं। संजय समझते हैं या नहीं इसमें संदेह है। तत्श्लोक कूटम अद्यापि ग्रथितम सुदृढ़ मुने भेत्तुम न शक्यते अर्थस्य गूढत्वात् प्रश्रितस्य च। ये कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीर अर्थक हैं कि आज भी इनका रहस्य भेदन कठिन है, क्योंकि इनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र्य के कारण गंभीर है। इस प्रकार महाभारत में 100,000 श्लोक हैं जो 3 विद्वानों द्वारा रचित होने के साथ न जाने कितने अज्ञात लेखकों द्वारा उसमें प्रक्षिप्त यानी घुसा दिए गए हैं। व्यास जी ने जानबूझकर ऐसे श्लोक लिखे और उनकी संख्या 9,000 के लगभग है जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं है। उनमें जो कुछ भी लिखा है उसका प्रामाण्य अतिशय संदिग्ध है, उसका अधिकांश अनार्श है, कल्पित है, वेद विरुद्ध है और परस्पर विरुद्ध भी है, प्रसंगोपात नहीं है। ऐसी स्थिति में महाभारत अंतर्गत सत्यासत्य मिश्रित सामग्री में से सत्य खोज निकालना और फिर उसे प्रमाणित करना एक स्वयं ही अत्यंत दुष्कर कार्य है। युद्ध की जिस स्थिति में गीता का उपदेश दिया गया उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान गीता का अधिकांश निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है। गीता का प्रथम अध्याय विवरणात्मक भूमिका रूप है, युद्ध की विभीषिका और उसके संभावित दुष्परिणामों का उल्लेख करके उद्विग्न मना अर्जुन चुपचाप बैठ गया। तदनंतर उसकी शंकाओं का समाधान करना श्री कृष्ण का काम था और वो उन्होंने कर भी दिया। यह समाधान गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम 38 श्लोकों तथा कतिपय अन्य श्लोकों तक सीमित है। इसमें 5-7 मिनट का समय लगा होगा। 700 श्लोकों में निहित ज्ञान विज्ञान की बातों के लिए न तो वहां उचित स्थान था और न ही अवसरोचित वो बातें थी। अर्जुन का खान पान ज्ञान भक्ति दान पुण्य यज्ञ योगाभ्यास मोक्ष लाभ सृष्टि उत्पत्ति वर्णाश्रम व्यवस्था आदि के विषय में प्रश्न उठाना और श्री कृष्ण का उन प्रश्नों का उत्तर देना वहां युद्ध के मैदान में सर्वथा अप्रासंगिक था। ये सब शांति काल में अवकाश के समय में एकांत स्थान में गुरु शिष्य परंपरा में बैठकर विवेचना के विषय थे। वैसा ही हुआ भी होगा अथवा वह किसी के द्वारा विविध विषय विभूषित संकलन हो सकता है जिसे उपयोगी जानकर कालांतर में गीता में जोड़ दिया गया होगा। यही कारण है कि गीता में परस्पर विरोधी प्रसंग विरुद्ध तथा निर्हेतुक पुनरावृत्त वक्तव्यों की भरमार है। योगीराज कृष्ण जैसे प्रौढ़ वक्ता के उपदेश में पुनरुक्ति और विरोध ढूंढने पर भी नहीं मिलना चाहिए था। फिर उस उपदेश में के व्यास जी जैसे साक्षात्कृत धर्मा ऋषि द्वारा संपादित होने पर तो सोने में सुगंधी आ जानी चाहिए थी। परंतु फिर भी गीता में ये दोष पाए जाते हैं। फलतः उसमें प्रस्तुत वाक्यों की सूक्ष्मेक्षिका से समीक्षा करनी चाहिए। विवेच्य श्लोक चतुर्थ अध्याय के हैं। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने, यानी जो श्लोक हमने आपको सुनाया था, वो श्लोक चौथे अध्याय का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक था। तो स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने वैदिक गीता नाम से प्रस्तुत गीता भाष्य में लिखा, चतुर्थ अध्याय के आरंभ से लेकर 25 श्लोक प्रक्षिप्त हैं, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक से लेकर कर्मयोग का प्रकरण चला है और छठे अध्याय के चौथे श्लोक तक चला गया है। चतुर्थ अध्याय का प्रथम श्लोक यह है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान गणवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। इस अधिकारी योग को मैंने विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। आगे चलकर कहा गया है कि स एवायम मयातेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, अर्थात वही यह पुराना योग मैंने तुझे आज कहा है। इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि कर्मयोग का प्रकरण समाप्त हो चुका, परंतु कर्मयोग का प्रसंग अभी समाप्त नहीं हुआ, दूर तक चला गया है। बीच में अर्जुन ने प्रश्न भी कर दिया था कि मनुष्य न चाहते हुए भी पापों को क्यों कर बैठता है। उसका उत्तर देकर चतुर्थ अध्याय के 16वें श्लोक में उसी प्रकरण को फिर से आरंभ कर दिया गया। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस विषय में विद्वान लोगों को भी भ्रांति हो जाती है। मैं तुझे वह कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तू अमंगल से छूट जाए। इस प्रकार यह प्रकरण निरंतर चल रहा है। इसके बीच में इसकी समाप्ति की सूचना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं, यहाँ के नहीं हैं। यदि ये मूल लेखक की रचना होते तो वह इन्हें प्रकरण के अंत में ही लिखता। आगे चलकर चौथे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि आपके और विवस्वान के काल में तो बड़ा अंतर है, फिर आपने विवस्वान को यह योग कैसे बतलाया। अपरम भवतो जन्म अपरम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने बतलाया, बहुनिमे व्यतिदानी जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ परंतु तू नहीं जानता। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को के समान ही अपने बार बार जन्म लेने की बात कही है। यदि वे अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते तो कहते कि तू तो जीवात्मा होने के कारण बार बार जन्म लेता है, परंतु मैं आवश्यकता होने पर कभी कभी जन्म लेता हूँ। निश्चय ही श्री कृष्ण ने अपने आप को जीवात्मा परंतु योगी के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे 7वें श्लोक में तदात्मानं सृजाम्यहं मे अहम का अर्थ विशिष्ट जीवात्म पुरुष ही लेना प्रकरण अनुकूल तर्कसंगत होगा। 8वें श्लोक का उत्तरार्ध है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, पर यहीं पर प्रक्षेपक महोदय ने बस नहीं कर दी। आगे चलकर भगवान की उपासना और उसके फल बतलाने आरंभ कर दिए हैं। इससे भी आगे चलकर उन्होंने श्री कृष्ण से चारों वर्णों की गुण कर्मानुसार सृष्टि कराई। इस प्रकार इस सारे प्रकरण को एक अजायब घर बना करके रख दिया, जिसमें कलाकृतियों के अपने आप में सुंदर होते हुए भी उनके संयोजन में न कोई तारतम्य है और न व्यवस्था, फलतः उनसे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। गीता के इन श्लोकों में जिस आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वह यह है कि जब भी समाज देश या विश्व में अनिष्टकारी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं तो उनका दमन करके धर्म व न्याय की स्थापना और दुष्टों का दलन करके सज्जनों की रक्षा में समर्थ शक्तियां जिस असाधारण पुरुष में साकार हो उठती हैं, उसके अलौकिक कार्यों से चमत्कृत होकर साधारण जन उसे ईश्वर अवतार पैगंबर आदि नामों से पुकारने लगते हैं। इस प्रकार के दिव्य गुण संपन्न महापुरुष समय समय पर इस संसार में आते रहते हैं, यानी अवतरित होते रहते हैं। इसका अर्थ पुष्टि आत्मानं सृजाम्यहं के पूरक ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम गीता 7:18 से होती है। इस प्रकार आत्मानं सृजाम्यहं का अर्थ आत्मानं ज्ञानिनं वास सर्जयाम्यहं करना तर्कसंगत होगा, यह गीता से गीता का अर्थ करना हुआ। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।